بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. بس ميرے حساب سے ذرا اونچا ہے تو اب آپ لوگ مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، یا اس طرف بھی جگہ ہے، آپ تو تھوڑا سا ایسے ہو جائے، یہاں بھی جگہ ہے، آپ ادھر آ جائیں، آپ ایسا ایسا آپ ادھر آ جائیں، ادھر اچھا. تو سیرت الصحابہ و خلفاء راشدین کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں. خلفاء راشدین کے بارے میں تو پڑھ کے ہم نے بات مکمل کر لی تھی، اور پھر ان کے بعد عشرہ مبشرہ صحابہ کی بات شروع ہو گئی تھی. اب تک ہم نے مکمل کر لیے اپنے دروس 7 عشرہ مبشرہ صحابہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، 7 کون کون تھے، کون گنوائے گا، ان 7 کے اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. دیکھ کر کے بغیر دیکھے گا نایا جی. یا یا ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد. اچھا، تو 4 خلفاء راشدین انہوں نے بتا دیے. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترتیب میں تو یہ نہیں تھے، آپ بتائیں محمد صاحب. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو 4 خلفاء راشدین ہو گئے تھے، اور ان کے بعد پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پڑھ کے ہم نے پچھلی کلاس کے اندر مکمل کر لیا تھا. یہاں پہ چیٹ ونڈو سوری کھلی بھی نہیں تھی، تو اس میرے صاحب کا جواب ہم دیکھ نہیں سکے. گرمس کی طرف سے جواب آیا تھا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک نام تھا نا وہ زبیر بن عوام. تو اب جو ہے آج انشاءاللہ ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں آج پڑھنا شروع کر رہے ہیں. تو یہ کون سے بنے، 8ویں عشرہ مبشرہ صحابی. صحیح ہے، تو اب ان کا نام سن کر کے، خیر سنا تو ظاہر پہلے بھی تھا کئی دفعہ، لیکن آج جب کلاس کی بات ہو رہی تھی گھر میں تو محمد صاحب نے سوال کیا کہ کیا ان کے بھائی کا نام وقاص تھا. کیسے،
ابھی وقاص
کیونکہ ان کے ابو کا نام اگر ابھی وقاص تھا تو اس کا مطلب ہے وقاص کے ابو تھے، تو وہ سعد کے بھی ابو ہے، وقاص کے بھی ابو ہے، تو پھر سعد اور وقاص آپس میں بھائی ہوئے. ٹھیک ہے، تو ایسا تو ہمیں نہیں ملا کہ ان کے بھائی کا نام وقاص تھا، لیکن ان کے ابو کا نام ابھی وقاص ضرور تھا، یعنی ان کے ابو کی کنیت جو تھی نا وہ ابو وقاص ضرور تھی. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے ایک دوسرے بیٹے کا نام وقاص بھی ہو، لیکن یہ ہم کتاب میں دیکھ نہیں سکے. تو یہ سعد رضوان جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے تھے، اور قریشی صحابہ میں سے تھے. ٹھیک ہے، اچھا کون کون بتائے گا کہ کچھ اور سعد حضرات بھی تھے، ٹھیک ہے، جو کہ قریشی نہیں تھے. چلے آپ سے تک نہیں پوچھا تھا،
سعد بن معاذ
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی اور بتائے گا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے
سعد بن عبیدہ
سعد بن عبیدہ یا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ دونوں سعد جو تھے یہ مکہ مکرمہ سے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے. ٹھیک ہے، اوس اور خزرج قبیلوں کے، یہ دونوں اپنے اپنے قبیلوں کے سرداروں میں سے تھے. تو ان کو جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں کے اندر سعدین بھی کہا جاتا ہے، دو سعد. ٹھیک ہے، تو یہ دو سعد جو ہیں یہ انصاری صحابہ ہیں، اور یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ قریشی صحابہ ہیں، مکہ مکرمہ سے آنے والے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ تین جو ہے वो बड़े प्रोमिनेंट साद नाम के सहाबी जो है वो हमारी तारीख के अंदर सहाबा के दरमियान मौजूद है, और तीनों बहुत प्रोमिनेंट थे। ठीक है, साद बिन मुआज के बारे में कौन बताएगा कि जो हमने सीरत के अंदर पढ़ा था, तो उनका कोई मेजर एक वाकया उनको आप जनरल बता चुके हैं अब्दुल्ला भाई। साद बिन मुआज के बारे में कुछ थोड़ा सा बता पाएंगे कोई? फिर उसके बाद साद बिन उबादा का भी पूछेंगे, तो पहले से तैयार करके रखें। साद बिन मुआज़ के बारे में क्या एक डिस्टिंग्विशिंग या एक रिमेम्बरिंग चीज साद बिन मुआज़?
तो क्योंकि उनको बहुत सारे जनाजे
सही, बिल्कुल सही। उनके जनाजे में ये एक एक उनकी बहुत ही यानी याद रखने वाली बात है, जो कि आमतौर पर बड़ी जिक्र की जाती है। जनाजा हुआ ना, तो नबी अलैहिस्सलाम उस जनाजे में अपने यानी क्या कहता उसके पंजों के बल चल रहे थे। ठीक है, तो लोगों ने पूछा कि अजीब आप तो ऐसे तरीके से चल रहे थे, पहले तो कभी हमने आपको ऐसे चलते नहीं देखा। तो फरमाया कि इतने फरिश्ते आए हुए थे कि मुझे चलने की जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को तो फरिश्ते नजर आते थे ना, तो इस वजह से उनको फील भी
कुछ
हो सकते हैं।
उनको फील होते थे कि उनको जाएंगे
फरिश्ते वो कुछ फिजिकली उनको फील होते थे कि आसपास चल रहे हैं, तो उससे उनको हुआ कि मुझे चलना चाहिए। जब आपको नजर आ रहे हैं तो फिर आपको इस तरह से ऐसे चल रहे हैं
फरिश्तों
ना। अच्छा नहीं, मतलब मे भी फरिश्तों की वजह से, लेकिन आप इस तरह से ना कि बहुत ज्यादा रश के अंदर, जैसे खुसूसन हज के मौके पे कभी ऐसा होता है, बहुत ज्यादा रश में हरम के अंदर, कभी तवाफ या सही के अंदर भी ऐसा हो जाता है कि इतना ज्यादा अज़दहाम हो जाता है कि आप जो है ना वो इवन पैर रखने की भी जगह पूरी नहीं हो रही होती, तो इस तरह से फिर पंजों के बल इंसान थोड़ी देर के लिए चलना पड़ जाता है। और
आपने इस्तेमाल किया था पिछली बार, ये क्वेश्चन आया था कि एक होता है जो दिमाग पे ना सोशल इफेक्ट होता है, खुद ब खुद ही वो काम करना शुरू हो जाते हैं। कि अक्सर होता है कि माइक की मिसाल दी कि माइक तो खुद ब खुद ही जोर से बोलते हैं, तो इस तरह खुद बखुद दिमाग का असर क्या प्रोसेस हो रहा है, खुद बखुद ही जरूरत शुरू हो चुके हैं।
हाँ, चले माशाल्लाह, आपको ये मिसाल भी याद थी, मुझे याद भी नहीं थी कि इंसान खुद ही अब सब कुछ जो है ना वो कुछ काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के माइक की मिसाल दी थी अभी तो कुछ ज्यादा ही मशक पे, वैसे माइक में जैसे अगर आप बोल रहे हैं लेकिन आपका ख्याल है कि जहन में बस आ रहा है कि पता नहीं मेरी आवाज लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, तो फिर आप खुद ही अपनी आवाज को तेज कर देते हैं। ठीक है, तो हालांकि आवाज पहुंच रही थी लेकिन आपका ख्याल था कि आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। उसी तरीके से जब आप हेडफोन्स लगाए हुए होते हैं ना, ठीक है, तो जब हेडफोन्स लगाते हैं तो उस वक्त अगर कोई दूसरा शख्स आपसे आकर के बात कर रहा होता है ना, तो उसकी आवाज आपको बहुत हल्की आ रही होती है। ठीक है, तो अब आप भी समझते हैं कि आपकी आवाज भी उसको हल्की आ रही होगी, तो आपकी आवाज लाउड हो जाती है। देखा इस तरीके से किसी हेडफोन लगे हुए बंदे से आप जाके बात करें तो वो ऊंचे आवाज में आपसे बात करना शुरू हो जाता है। मैं क्यों इतनी ऊंची आवाज से बात करें, मैं सामने बैठा हूँ आपके, मुझे आवाज आ रही है आपकी, लेकिन वो समझ रहे हैं कि उसकी आवाज आपको नहीं आ रही। तो इस तरीके से सबकॉन्शियसली इंसान जो होता है वो बहुत ही अवेयर हो जाता है कि अच्छा इतने सारे लोग हैं तो मैं जरा सिमट जाऊं, मैं सिमट करके चलना शुरू हो जाऊं। तो सिमट के चलने के लिए जरा पंजों के ऊपर भी चलना शुरू कर दिया। बहरहाल फरिश्ते होते ही हैं और दूसरे सहाबा के यकीन जनाजों में भी फरिश्ते होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने इस मौके पर ईमान वालों को बताना चाहा कि मेरे ये चाहने वाले मुआज जो है ना, तो इनकी ये शान मैं लोगों के सामने बयान भी फरमा दूं। ठीक है, बयान भी कर दूं, तो इस बहाने नबी रसूल को जो है वो टिपटोस पे चलने की अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमा दिया कि अब आप ऐसे चलें ताकि लोग आपसे पूछें, जब आपसे पूछेंगे तो मेरे साथ की ये अजमत खुल करके सामने आएगी, लोगों को भी पता चलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह क्या बनी? साधारण की अजमत जो है वो ऐसे अल्लाह ताला ने खोल करके लोगों के सामने बयान फरमा दी, साद बिन मुआज़ की। इसकी वजह क्या बनी? अब्दुल्ला भाई शायद बताना चाह रहे थे।
वो खंदक की जो जंग थी उसके मैन ऑफ द डे
माशाल्लाह, खंदक की जंग के मैन ऑफ द डे थे वो। ठीक है, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना अता फरमाइएगा कि जब तक मैं इन यहूदियों को ना अपने अंजाम तक पहुंचता हुआ ना देखूं। ठीक है, जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ गद्दारी करी है ना, मैं जब तक इनका अंजाम ना देख लूं मुझे मौत ना अता फरमाइएगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनको रोके रखा रोके रखा रोके रखा। जब उनका मामला हो गया, सबका फैसला हो गया कि अभी इनको तो खत्म कर देना है, तो उसके बाद फिर साद बिन मुआज़ की का इंतकाल हो गया, वरना जख्मी तो वो पहले ही हो चुके थे और उनके बचने के आसार कोई बाकी नहीं रह गए थे। अच्छा, दूसरे हैं साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु इनकी मशहूरियत तो बहुत सारी वाकयात है तारीख के अंदर, लेकिन ज्यादा एक वजह मशहूरियत जो थी वो इनके सकीफा बनु साद। ठीक है, सकीफा बनु साद आपने देखा है मस्जिद नबवी में जब उहद की तरफ से दाखिल होते हैं तो राइट साइड पे बिल्कुल जहाँ पे सहन खत्म होता है ना, तो वहां पर एक छोटा सा बाग है। ठीक है, वहां पे अभी भी दरख्त वगैरह आपको नजर आते हैं, वो सकीफा बनु साद है, यानी उनके बनु साद कबीले का वो एक मीटिंग पॉइंट था, वो एक कन्वर्जिंग पॉइंट था। वहां पे लोग बैठा करते थे उस कबीले के और आपस में मशवरे वगैरह किया करते थे, तो वहां पे नबी अलैहिस्सलाम भी जाया करते थे। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए थे तो सतीफा बनु साद के अंदर क्या हुआ था?
खिलाफत का कुछ
खिलाफत का सारा मामला कि कौन नबी अलैहिस्सलाम का खलीफा बनेगा, ये सारी डिस्कशन जो हुई थी मुसलमानों के दरमियान ये सतीफा साद के अंदर। ठीक है, अंसारी सहाबा तो पहले ही इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया गया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जल्दी 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 जो है वहां पे पहुंचे और फिर वहां पर सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल में किया और फिर ये सारी खिलाड़ी सब्सक्रिप्शन हुई थी। तो साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे साद हैं और पहले साद जो बल्कि तीसरे साद हैं, पहले साद जो है उस साद में अभी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। तो इस उम्मत के जो 10 खुश नसीब हजरात जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया में नाम ले ले करके जन्नत की बशारत अता फरमाई, तो उनमें ये भी शामिल थे। अच्छा, नाम इनका साथ था और इनकी अपनी कुनियत क्या थी? अबू इसहाक। इनकी अपनी कुनियत अबू इसहाक थी और वालिद का नाम था मालिक, मालिक, और उनकी कुनियत अबी वकास थी, ये अबू वकास अबी वकास इसे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वालिदा का नाम जो था वो हमना था। ठीक है, तो अब इन दोनों के ईमान लाने का तो तस्करा नहीं देखा, मालिक और हमना ये इनके वालिदैन थे। वालिद का जो ताल्लुक था ना वो था कबीला बनू जहरा से, कबीला बनू जहरा, और वालिदा का ताल्लुक कहाँ से था? कबीला बनू उमैया। ठीक है, बनू जहरा से वालिद थे, बनु उमैया से वालिदा थी। अब बनु जहरा ये दोनों जो थे कुरैश के ही कबीले थे, यानी कुरैश बड़ा कबीला था और उसके अंदर छोटे छोटे बनु हाशिम, बनु जहरा, बनु उमैया वगैरह। ठीक है, तो अब इनकी कोई यादगार बात बता सकता है बनु जहरा और बनु उमैया के बारे में? जी फरमान,
उस्मान
शायद नहीं थे। ठीक है, तो बनु उमैया से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु थे, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु थे और बहुत सारे दूसरे सहाबा बनु उमैया से थे। माशाल्लाह। ठीक है, बनु जहरा से कौन थी? नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हजरत बीबी आमिना। ठीक है, रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बारे में दो हदीस के मुताबिक वो अल्लाह ताला ने उनको ईमान की तौफीक बाद में अता फरमा दी, तो हजरत बीबी आमिना ये बनु जहरा से थी। तो अब बनू जहरा से कौन हुई? नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा। ठीक है, और साथ में नबी वकास हसन के वालिद यानी मालिक वो भी बनू जहरा से थे। अच्छा, खाली कबीला दोनों का सेम नहीं था बल्कि दोनों के अब्बू जो थे ना वो आपस में भाई भी थे, यानी बीबी आमना के वालिद और मालिक के वालिद ये दोनों आपस में भाई थे, तो ये दोनों जो है वो चचाजात कजन्स थे। ठीक है, जो कि एक तरह का भाई वाला रिश्ता भी बनता है। ठीक है, चचाजात भाई थे बीबी आमना के कौन? ये मालिक। तो अब 7 दिन, 7 रिजरतान के, फिर नबी अलैहिस्सलाम का क्या ताल्लुक बना 7 रिजरतान से? मैथमेटिकल जिगर मैथ पढ़ाने वाले अंकल जवाब नहीं, भाई जवाब नहीं।
कर
सेकंड कजन थे, राइट? तो सेकंड मामूजात कजन, बिल्कुल सही फरमाया, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम के 7 रिजरतान जो है वो कजन बने, मामूजात कजन बने, लेकिन फर्स्ट कजन नहीं, सेकंड कजन बने, ठीक है। अली रजान जैसे फर्स्ट कजन थे, ये फर्स्ट कजन नहीं थे, सेकंड कजन बने, मामूजात, सही है। अच्छा, 7 रतान का सिलसिला नसब छठी पुश्त पर हजरत के नाब, नहीं हजरत तो खैर नहीं होता उनका, तो ईमान को कोई नहीं पता। तो 7 रतान का जो सिलसिला नसब था वो छठी पुश्त यानी केलाब बिन मुर्रा पर जाकर नबी अलैहिस्सलाम के सिलसिले नसब से मिल जाता है। 7 अजान का सिलसिला नसब छठी पुश्त पर, छठी पुश्त, ठीक है, फादर की साइड पर ही पुश्त काउंट करती है, ठीक है। तो अब किस तरह से बनेगा, ये भी एक हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया जी।
ग्रेट 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 ग्रैंडफादर
नाम बताए ना, कौन 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 ये पूछ रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? हजरत अब्दुल्ला, ठीक है। उनके वालिद कौन थे? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के वालिद कौन थे? हाशिम, ठीक है। हाशिम के वालिद कौन थे? अब्द मनाफ, ठीक है। अब्द मनाफ के वालिद कौन थे? एक मिनट, अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम, अब्द मनाफ, ये पांचवें कौन थे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर? उसे हाँ, उसे के ऊपर जो थे ना वो किलाब थे। तो उसे के ऊपर किलाब थे और किलाब के ऊपर जो है मुर्रा थे। अच्छा, किलाब जो थे तो किलाब की एक औलाद उसे हुए और किलाब की दूसरी औलाद कौन है? वो हुए जहरा, ठीक है। किलाब की दूसरी औलाद थे जहरा। जहरा के बेटा, वो रिसेंटली कहीं पढ़ा पढ़ा भी था, जहरा के बेटा एक दूसरे अब्द मनाफ भी थे अलग, ठीक है। या तो वहब थे, अब्द मनाफ थे और नीचे एक और थे, और उनके नीचे जो है ना फिर बीबी आमिना था, और बीबी आमना के चचा भाई कौन थे? मालिक, ठीक है। तो यानी मालिक अब्बू थे 7 रतान के, ठीक है। तो 7 रतान की भी छठी नसब जो है वो जाकर के किलाब से मिलती है और नबी अलैहिस्सलाम की छठी नसब किलाब से मिलती है, बल्कि मालिक की 5वीं नसब जाके किलाब से मिलती है, वो 5 थे यहाँ पे ना, और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर छठे बनते हैं किलाब। तो इस तरह से नबी अलैहिस्सलाम के जो हैं वो छठे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर जो हैं वो 7 रतान के ही ग्रैंडफादर, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नबी अलैहिस्सलाम 7 रतान ऊपर जाकर के उनके मर्ज हो जाते हैं। अच्छा, तो ये तो कुछ सिलसिला नसब वगैरह के बारे में बातें हो गई जी।
यार पढ़ा हुआ, जब हम सीरत नबी पढ़ रहे थे सल्लल्लाहु, तो उसमें हमने जब पढ़ा था शेब अभी तालिब में, जब बॉयकॉट कर रहा था तो चले गए थे, तो हालांकि हमने इनके हजरत नबी वक्कास के बारे में पढ़ा था कि इनके ऊपर हालांकि नहीं था वही बॉयकॉट वाला, क्योंकि वो सिर्फ बनु हाशिम के ऊपर था, लेकिन फिर भी ये साथ मोहब्बत में चले गए थे।
हाँ बिल्कुल, ऐसे आगे इसका वाकया आएगा भी, ठीक है। कि ये अगरचे कि बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया कि बनु हाशिम का बायकॉट था वो नबी अलैहिस्सलाम की इमीडिएट फैमिली, लेकिन ये तो बनु जहरा में से थे, ठीक है। लेकिन ये भी नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से उस बायकॉट का हिस्सा बन गए थे, और ऐसा हिस्सा बने थे कि ये नहीं कि जैसे नफली एतिकाफ होता है ना नफली एतिकाफ क्या होता है कि मैं एतिकाफ में भी हूँ लेकिन मैं बाहर भी चाय चाय की जल चाह रहा था, चाय पीने चला गया, फिर उसके बाद कहीं और जो है घूमने फिरने के लिए चला, जैसे घूमने फिरने चला गया, और लेकिन यहाँ पे भी मैं मुतकफीन के साथ भी हूँ, ठीक है, लेकिन चाय मैं बाहर जाके पीऊंगा ये ऐसा वाला नहीं था इनका मामला, बल्कि ये ऐसे बायकॉट का हिस्सा बने थे कि इनके ऊपर भी खाना पीना सब कुछ बनता, ठीक है, और इनको भी चमड़ा भिगो भिगो करके पड़ रहा था, माना कि इनकी कोई फर्जियत नहीं थी, लेकिन गोया के जैसे भी बात हुई ना, फिल्म स्टार्ट कर लिया तो अब वो वाजिब हो जाता है। तो अब इनके ऊपर ये का मुकाम जो है, अगरचे कि शुरू में ये वाजिब नहीं था, शुरू में तो इनके लिए नफिल था भाई, आप आना चाहे आ जाए, नहीं आना चाहे नहीं है, आप तो बनी आशी में से नहीं है, लेकिन जब इन्होंने शुरू कर लिया तो फिर ये वाजिब अपने ऊपर खुद ही इन्होंने वाजिब कर लिया। अच्छा, सात बिन अबी वकास जो है वो हिजरत मदीना मुनव्वरा से 30 साल पहले पैदा हुए थे, तो 13 साल तो नबी अलैहिस्सलाम के मक्का मुकरमा की जिंदगी के गुजरे बेसत के बाद, तो ये उससे भी जो है ना वो कोई 27 ईयर्स पहले, ना नहीं 17 ईयर्स पहले पैदा हुए थे। तो दादा इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, नबी सलाम से काफी ये जूनियर थे। हिजरत मदीना में नबी सलाम की उम्र कितनी थी, 53 ईयर्स, राइट, 13 साल, 40 साल के बाद फिर 13 साल बाद, तो 53 ईयर नबी सलाम की हुई, तो ये उससे जो है ना वो 30 साल पहले पैदा हुए थे। अच्छा, आपका जरिया मुआश तिजारत था, आपका कद छोटा था, जिस्म मोटा था और खूबसूरत जिस्म था, ठीक है, यानी बहुत ही अच्छी जिस्म, खूबसूरत जिस्म जब मर्दों के लिए कहा जाता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि ही वॉज गुड हेल्दी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फरबा जिस्म होता है, ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल काकड़, तो अल्लाह ताला की तरफ से किसी को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया होता है, बिल्कुल उनके ऊपर कल कई बात हो रही थी दोस्तों में बैठे होते, कह रहे थे भाई जितना भी खा ले ना इनके ऊपर नहीं चढ़ता, ठीक है, और कुछ लोग जो है वो हमारे जैसे थोड़ा सा भी खा ले फौरन नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल किस्म के जिस्म होता है बहुत ज्यादा, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ये मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी डिपेंड करता है, कैसे अल्लाह ताला ने आपका ये निजाम बनाया है। तो इनका जिस्म जो था वो थोड़ा सा मोटी साइड के ऊपर था और खूबसूरत थे, हथेलियां बहुत कुशादा थी, नाक इनकी जो है वो कोई लंबी नाक नहीं थी, बल्कि चुपटी लिखा हुआ है, तो ऐसे अल्लाह ताला ने, लेकिन जाएंगे जन्नत में, ठीक है, और अबू लहब जो कि इतना खूबसूरत, इतना जबरदस्त सुर्ख सफेद चेहरा और ऐसी आंखें और ऐसी शान, और ये वो जाएगा जहन्नम के अंदर, ठीक है, तो और ये तो खैर बहरहाल कुरैश के भी थे, अब बिलाल हबशी रजी अल्लाह, ठीक है, तो बिलाल हबशी रजी को तो और भी दुनियावी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो बिल्कुल भी उसमें नहीं आते हैं, लेकिन जन्नत में वही जाएंगे, दूसरे नहीं जाएंगे। जिसमें बहुत ज्यादा बालों वाला था, कुछ लोगों के बदन के ऊपर ज्यादा बाल होते हैं और आप अपने बालों पर खिजाब लगाया करते थे, ठीक है, तो ये शाहजहां की पैदाइश और वलिये के बारे में कुछ बातें हजरत ने फरमाई थी। फिर उसके बाद शाहजहां की सलाहियतें क्या थी, कि बड़ी अच्छी इनकी तरबियत हुई थी, ठीक है, इनके वालिदैन इनकी तरबियत अच्छी करी थी, जमाने जाहिलियत में भी आप उन लोगों में शामिल थे जो लिखना पढ़ना भी जानते थे, ठीक है, तो लिखना पढ़ना जानना जो है ये क्या पता चला कि ये एक अच्छी तरबियत की निशानी होती है, ठीक है, यानी वालिदैन ने लिखना पढ़ना सिखाया था। नबी अलैहिस्सलाम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो क्या नबी अलैहिस्सलाम की अच्छी तरबियत नहीं हुई थी, नहीं, नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा अच्छी तरबियत तो किसी की भी नहीं हुई थी,
पहले
नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन थे ही नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत तो अल्लाह ने फरमाई ना, ठीक है, तो अल्लाह से ज्यादा अच्छी तरबियत कौन कर सकता है, तो वो एज एन एक्सेप्शन नबी अलैहिस्सलाम का मामला ये था कि लिखना पढ़ना अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीखने ही नहीं दिया। जी
क्वेश्चन
जी क्या
क्या
कलर लगाना है जिसको कहते हैं ना बालों के ऊपर, जी
मेरा
सही, वही तो आपके बोल रहे। अच्छा, तो लिखना पढ़ना अदरवाइज इंसानों के दरमियान जब देखा जाएगा, नबी अलैहिस्सलाम वाज एन एक्सेप्शन, ठीक है, और वो क्योंकि अल्लाह ताला चाहते थे कि जितनी तालीम हासिल करनी है ना वो मुझसे हासिल करनी है, वाया जिब्रील अलैहिस्सलाम, और कहीं दूसरी जगह से इन्होंने तालीम ही हासिल करनी, तो मैंने इनको ऐसा बनाना है कि जैसा कि दुनिया में कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा, लेकिन ये डेफिनेशन जो है वो दूसरों पे अप्लाई नहीं होती, तो अब दूसरों में क्या है कि जो पढ़ना लिखना जानता होगा वही ज्यादा अच्छी तरबियत वाला कहलाएगा, ठीक है। सच्ची बात यह है कि माशाल्लाह आप लोग मेहनत मेहनत तो कर रहे हैं, वो अब्बू करवा रहे हैं, अम्मी करवा रही हैं, वो करना ही है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई जो है वो करनी ही है, लेकिन सच्ची बात यह है कि रीडिंग जो है ना, रीडिंग ये अगर किसी को आ गई और इसका किसी को शौक पैदा हो गया, बस खलास, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, रीडिंग जिसको आ गई, क्या मतलब होता है कि पढ़ना आ गया लेकिन रीडिंग के अंदर कॉम्प्रिहेंशन भी शामिल होती है। ठीक है, बात को पढ़ करके आप समझ लें। ठीक है, तो ये जिसको आ गया ना, और फिर वो फिर पढ़ना शुरू भी हो गया, यानी कि रीडिंग तो आ गई लेकिन पढ़ता पढ़ता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जिसको रीडिंग आ गई और उसने पढ़ना शुरू कर दिया, अब उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो बहुत आगे जाएगा। सही है। अब जाहिर है कि पढ़ने में फिर ये है कि अच्छी चीज पढ़नी है, बुरी चीज नहीं पढ़नी है, फायदेमंद चीज पढ़नी है, नुकसानदेह चीज नहीं पढ़नी है, लेकिन दैट इज इट। ये फिर ना आपको बहुत आगे लेकर के जाता है, इल्म के अंदर भी, तालीम और तरबियत के अंदर भी। ये चीज आपके लिए, यानी दिस इज द की, दिस इज द की। ये की अगर हासिल नहीं है ना, फिर क्या होता है, बस पढ़ो किसी तरीके से मार्क्स लेकर के आओ, पढ़ो किसी तरीके से मार्क्स लेकर के आओ, पढ़ो किसी तरीके से मार्क्स लेकर के आओ। ठीक है, वो डिग्रियां मिल रही होती हैं, मार्क्स मिल रहे होते हैं, लेकिन इधर अकल वकल में कुछ नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो जी, तो ये जो थे ना पढ़ने लिखने वालों में, तो इसके साथ साथ तीरंदाजी और फनून जंग में भी ये बहुत माहिर थे। तो फिजिकल तरबियत भी इनकी बेहतरीन करी थी इनके बड़ों ने, और इंटेलेक्चुअल तरबियत भी इनकी बेहतरीन करी थी। अच्छा, फिर इनका कबूल इस्लाम का वाकया कैसा है, कबूल इस्लाम का मामला इनका क्या है, कि ये उन हजरात में ये भी शामिल हैं जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की दावत पर, या अबू बकर सिद्दीक की समझाने पर ये ईमान लेकर के आए। ठीक है, लेकिन इनका वाकया ईमान लाने का इस तरह से बनता है कि ईमान लाने से, मुसलमान होने से 3 रातें पहले ये सोए हुए थे, इनको ख्वाब आया, और ख्वाब में इन्होंने देखा कि चांद जो है ना वो आसमान के ऊपर फुल ब्लूम के ऊपर है, और चांद की रोशनी तो है लेकिन ये समंदर में डूब रहे हैं। ठीक है, समंदर में डूब रहे हैं जी। ब्लूम का मतलब, आज रात को चांद जाकर के देखिएगा, आपको फुल ब्लूम पे नजर आएगा, यानी फुल मून जिसको कहते हैं ना। ठीक है, ब्लूम का लफ्ज यूजुअली जो है वो मून के लिए इस्तेमाल नहीं होता, उसके लिए तो फुल मून का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन फूलों के लिए इस्तेमाल, ब्लू मून नहीं, ब्लू मून नहीं, ब्लूम का जो लफ्ज है ना, ये आमतौर पे ये फूलों के लिए इस्तेमाल होता है, जब फूल जो है वो मुकम्मल खिल चुका होता है ना, तो उसको कहते हैं इट्स ऑन इट्स फुल ब्लूम। ठीक है, तो हमने वही चीज जो है वो चांद के लिए इस्तेमाल की, क्योंकि आजकल जो है वो पूरा चांद है इस वक्त, 14वीं भी जिसको कहते हैं। तो इस तरह से चांद तो है, लेकिन ये जो है ना वो समंदर में डूब रहे हैं, और समंदर में बहुत तारीकी है। अजीब ख्वाब तो ख्वाब होता है, ख्वाब जो है वो बिल्कुल दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होता। दुनिया में क्या होता है कि जिस वक्त सूरज की, वो चांद की रोशनी रात में होती है, तो उस वक्त जो होता है वो समंदर भी जो होता है वो भी रोशन हो जाता है। ठीक है, वो भी जो है वो आपको सुनहरी सा नजर आता है, रोशन रोशन सा नजर आता है, लेकिन इनके ख्वाब में क्या था कि ऊपर तो रोशनी है नीचे तारीकी है। अजीब, ठीक है, यानी रोशनी भी है तारीकी भी है, और ये जो है वो तारीकी में है, और ये उस तारीकी के अंदर मजीद डूब रहे हैं, मजीद डूब रहे हैं। ठीक है, हत्ता कि इन्होंने देखा कि वो चांद की तरफ लपके, ताकि किसी तरीके से वो इस तारीकी में से निकल करके रोशनी की तरफ आ जाए, लेकिन उनसे पहले ही वहां पर कुछ लोग मौजूद थे, यानी रोशनी की तरफ चांद की कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। तो उसमें उन्होंने देखा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रतान पहले से वहां पे मौजूद है, अली अल मुर्तजा रतान पहले से वहां पे मौजूद हैं, और जैद बिन हारिसा रतान पहले से वहां पे मौजूद है। ठीक है, अल्लाह ताला ने खदीजा रतान ना दिखाई क्योंकि वो औरत थी, पर देखे हुक्म नहीं भी आया था लेकिन हया तो पहले भी थी, राइट। तो अल्लाह ताला ने खदीजा नहीं दिखाई, लेकिन ये तीनों हजरात जो है वो मुसलमान हो चुके थे और मर्द थे, तो ये तीनों उनको दिखा दिए। जब इनकी आंख खुली ना, तो उन्होंने अपने ख्वाब की ताबीर ये समझी कि अल्लाह ताला मुझे कोई भलाई दिखलाना चाहते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रतान जो है वो इनके दोस्तों में से थे, और अबू बकर सिद्दीक रतान सबसे अच्छे और संजीदा और ऐसे थे कि जिनके पास लोग जाया करते थे ना, बड़ा कंफर्टेबल फील करके। नबी अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के, अल्लाह ताला ने अजीब शान बनाई थी ना, तो इस तरह के लोग जो है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास चले जाया करते थे मशवरा करने के लिए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को तो पता था कि भाई नबी अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, बेशक धर्म आ चुके हैं, और वो तो खुद मुसलमान हो चुके थे। तो उन्होंने फिर इनको बस मजीद समझाया कि भाई ये जो है ना रोशनी, ये तारीकी, इसका मतलब ये है, रोशनी का मतलब ये है, चलो मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। तो वो लेकर के आए नबी अलैहिस्सलाम के पास, और नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त मोहल्ला अजियाद की एक घाटी में तशरीफ फरमाते हैं। ठीक है, अजियाद कहाँ पर है? जब आप बाब अब्दुल अजीज से निकलते हैं या स्लोप से नीचे उतरते हैं, रैम से नीचे उतरते हैं, तो लेफ्ट साइड की तरफ जो पूरा इलाका है ना वो अजियाद का इलाका कहलाता है। तो वहां पर पहाड़ आज भी हैं, इवन वहां पे जो होटल्स वगैरह वो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं। तो वहीं पे कोई छोटी सी घाटी, यानी छोटी सी कोई ऐसी गहरी सी कोई जगह थी, वहां पे नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे। ये वहां पे पहुंचे और नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर दिया। ठीक है, इनके कबूल करने के बाद ये आजाद और बालिद लोगों में ये तीसरे नंबर पर हुए। आजाद और बालिग लोगों में, क्योंकि अली रज़ी अल्लाह तआला जो थे वो बालिग नहीं थे, और जैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला जो थे वो आजाद नहीं थे क्योंकि वो गुलामों में से थे। ठीक है, तो ये फिर आजाद और बालिग लोगों में तीसरे नंबर पर, क्या मतलब? खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आजाद भी थी, बालिगा भी थी, अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आजाद भी थे, बालिग भी थे, और तीसरे फिर सात दिन वकास रतान हुए जो कि आजाद भी और बालिग भी। और इनके ईमान लाने के पूरे 7 दिन तक कोई और शख्स जो है वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ये पांचवें बने, खदीजतुल कुबरा रतान, अबूबकर सिद्दीक रतान, अली रतान, जैद बिन हारिसा रतान, फिर सात दिन वकास रतान, ओवरऑल में ये पांचवें बने। आजाद और बालिग लोगों में ये, मर्दों में ये तीसरे बने,
दूसरा ओवरऑल
मर्दों में तो दूसरे बने, ओवरऑल में ये आजाद और बालिग के ओवरऑल के अंदर ये तीसरे बने। ज़्यादा बोलना, ठीक है। अच्छा, टाइम तकरीबन खत्म हो गया है। एक वाक्य वाक्य तो खैर नहीं है, लेकिन एक बात को इस करके मुकम्मल करते हैं, वो ये कि कबूल इस्लाम पर क्या हुआ कि इनको फिर लोगों ने कहा आओ हार पहनाओ हार पहनाते हैं अबू साद जो है मुमताज को, और इनको लड्डू खिलाते हैं, चलो चलते हैं हारा जाके इनको बिरयानी खिलाते हैं, मुसलमान हो गए राइट। अब हम भी बिरयानी खाते थे, अब ये भी बिरयानी खाएंगे हमारे साथ बैठ कर। हमारे एक दोस्त थे वो यही कहते थे, मतलब तो मुसलमान करो सब बैठ के बिरयानी खाएंगे अब। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने लड्डू नहीं खिलाए, किसी ने पेड़े नहीं खिलाए, किसी ने हार नहीं पहनाया। ठीक है, बल्कि क्या हुआ कि और तो और इनकी अपनी वालिदा इनके पीछे पड़ गई, इनकी अपनी अम्मा जो थी ना, ठीक है, तो वो जो है वो इनके पीछे हाथ धो के पड़ गई। और इस तरह से कि उन्होंने कहा कि साहब जब तक तुम इस्लाम को नहीं छोड़ोगे ना, मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगी। वो भूख हड़ताल पे चले गए। तलहा जतान की वालदा जो है वो उनको मारना शुरू हो गई। हर बंदे का अपना अपना एक रिएक्शन होता है, ठीक है, वो उन्होंने तो मारना ही शुरू कर दिया, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। लेकिन इनकी वालिदा जो थी, ये हो सकता है मारने के स्टेट में नहीं होंगी, इनके पास इतनी ताकत नहीं होगी कि साथ में मार सके। उन्होंने कहा मैं भूख हड़ताल में जा रहा हूँ, मैं तो उस वक्त तक खाने नहीं खाऊंगी जब तक तुम इस्लाम को नहीं छोड़ोगे, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। तो साधुतान ने पहले उनको समझाने की कोशिश करी, भाई ये क्या मतलब, मैं ईमान लाया हूँ, उसका आपके खाने से क्या ताल्लुक है, आप खत्म करें ये अपनी भूख हड़ताल। लेकिन उन्होंने जो है ना वो खा करके नहीं दिया, बल्कि जिद पर डटी रही। तो बिलाखिर उन्होंने साधुदान से फरमा उन्होंने वालदा से फरमाया कि अल्लाह की कसम, अगर आपके जिस्म में 1,000 जाने भी हो ना, ठीक है, 1,000 जाने भी हो, और वो भी एक एक करके आपके जिस्म से निकल जाए, मैं उस वक्त भी इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, यानी आप मर जाए मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा, फिर आप दोबारा जिंदा हो जाए, फिर आप भूख हड़ताल पे चली जाए, फिर आप भूख से मर जाए मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा, फिर आप जिंदा हो जाए, फिर उसके बाद भूख हड़ताल से चले जाए, फिर आप मर जाए मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा, इस तरह से आप 1,000 मरतबा भी दोबारा जिंदा होने के बाद दोबारा मर जाए मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा, मैं इस्लाम नहीं। ठीक है, तो अल्लाह ताला को उनकी ये बात इतनी पसंद आई, इमेजिन करें, इतनी पसंद आई कि कुरान मजीद की आयात नाजिल हुई। हजरत जी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं मेंशन कर रहा, हजरत जी मेंशन कर रहे हैं कि ये आयात नाजिल हुई, व इन जाहद का आला अन तुश्र का भी मा लगी सर का भी इल्म, कि अगर वो तुम पर ये जोर डालें कि तुम मेरे साथ किसी को खुदाई में शरीक करार दो, किसी और के साथ शिर्क करो मेरा, जिसकी उनके पास कोई दलील नहीं है, ठीक है, यानी यार कहाँ से वो लेकर के आ जाते हैं शिर्क करने के ऊपर किसी को बोलना, वो उनके पास कौन सी ऐसी दलील है, बगैर दलील की बोलते हैं ये लोग। तो अगर ये जा हदा का ये कौन सा सीगा है, तस्निया का सीगा, ड्यूल का सीगा, यानी तुम्हारे अम्मी और तुम्हारे अब्बू अगर ये दोनों जो है वो तुम्हारे ऊपर शिर्क करने के ऊपर प्रेशर डालें, फला तो क्या हुमा, तो उनकी अताअत ना करना, दोनों की अदात, हुमा हुमा का सीधा था, पढ़ने वालों को ना पढ़ने वालों को पता है, इन दोनों की अदात ना करना। लेकिन वसाहिब हुमा फिर दुनिया मारूफ है, लेकिन उनके साथ बदतमीजी ना करना, उनको झिड़कना नहीं, उनको मारना नहीं, उनके साथ कोई और ऐसी बदतमीजी वाला मुआमला करना ना करना, ठीक है। साहिब होमा दुनिया मारूफन, तो मारूफन का जो लफ्ज होता है वो अच्छे मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है, अमर बिल मारूफ, ठीक है, मारूफ का हुक्म करो दूसरों को, क्या मतलब है, जो नेकी के काम होते हैं, अच्छाई के काम होते हैं, उनका हुक्म करो, तो इस तरह से इन लोगों के साथ जो है वो मामला करते रहना, ठीक है। तो यही मामला जो है वो हमारा भी ये है कि अगर अगर खुदा ना खास्ता अम्मे अब्बू कोई ऐसी गलत बात कहते हैं करने के लिए जिसको कि अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमाया है, तो हम उनकी बात नहीं मान सकते, लेकिन उनके साथ हमने बुरा सलूक नहीं करना। बेशक नाराज तो वो होंगे, जब आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो खुश नहीं होंगे, आपको प्यार नहीं करेंगे, वो आपसे नाराज भी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने जो है ना वो उनके साथ कोई ऐसा गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन एक और बात यहाँ पे याद रखें कि उसूल है ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, ठीक है, क्यों, उसकी वजह यह है कि अम्मी अब्बू जब खुदा ना खास्ता कोई गुनाह करने के लिए कहते हैं ना, ठीक है, अगर अल्लाह ना करे किसी के अम्मी अब्बू ऐसा करें, लेकिन अगर कोई अम्मी अब्बू गुनाह करने के लिए कहते हैं ना, तो उस वक्त अगर आप जरा देर होशियारी दिखाएं और आप हाफिज कुरान भी हो और आप उनको ये आयत पढ़ के सुनाएं कि देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन जाहदाक ठीक है कि तुम उन दोनों के जो अगर वो तुम्हें शिर्क करने के लिए कहें फला तो तुम उनकी अदात न करना, आप ये आयत सुनाए अम्मा अब्बा को, तो आगे क्या जवाब देंगे, नहीं
अच्छा
नहीं ऑनलाइन में से आज कोई भी जवाब नहीं दे रहा अभी दे रहे प्राइवेटली, अभी क्या जवाब देंगे आगे से, ये तो तरीके मुश्किल वाले जवाब दे रहे होते सारे, इन्होंने कहा था तरीके मुश्किल रास्ता कह रहे जी
सेलेक्ट तो नहीं करने जा रहे हैं आपसे।
एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल ये जवाब मिलेगा कि हम आपको छिड़ करने को थोड़ी कह रहे हैं, हम आपसे कब कह रहे हैं कि आप बुतों का की पूजा करें, हम आपसे कब कह रहे हैं कि जो है वो आप मंदिर पे चले जाएं और जाके पूजा पाठ करना शुरू कर दें, और हम आपसे कब कह रहे हैं कि आप ईसा अलैहि सलाम को खुदा का बेटा कहना शुरू कर दें, ये तो आयत करनी चलेगी ना उधर, क्योंकि इसका जवाब तो पहले से तैयार है। नहीं?
जी इससे कोई आश्चर्य की हो अगर आप लगता आप अपने वालदेन के हुक्म पे कर रहे हैं क्योंकि तो उसका मतलब आप अल्लाह के हुक्म पे अपने वालदेन के
इतनी कॉम्प्लिकेशन में कौन जाता है, तो अब थोड़ा सा क्लियर हुआ है ना जाकर के, पहले ये तक वो नहीं चलता था, अब तो तसव्वुफ अल्लाह ताला ने खोला है, नफ्स वगैरह चीजें जो है वो सामने आई है, तब ये चीजें आप लोगों को पता चली ना, वरना आज से 20 साल पहले सब नहीं पता था किसी को, तो उस वक्त जो है ना फिर कौन सी दलील चलती है, ये आयत वाली दलील नहीं चलती बल्कि ये हदीस वाली दलील चलती है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, ठीक है, कि मखलूक की कोई अताअत नहीं करी जाएगी अगर वो अल्लाह की नाफरमानी शक्ल में हो, अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए कह रहे हैं तो बस नहीं अताअत करनी है, चाहे अम्मी हो, चाहे अब्बू हो, चाहे चचा हो, चाहे दादा हो, चाहे टीचर हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। लेकिन आखिरी बात बस ये याद रखें कि ये बात याद रखें कि ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक जो है ना, ये उसूल तो हमने समझ लिया, लेकिन इस उसूल पर अमल करने के लिए क्या चीज प्री रिक्वेस्ट है वो बता करके क्लास खत्म करें।
He was a leader of Banu Qurayza in order to kill one of his men to cheat him.
हाँ, तो क्या प्री रिक्विजिट है इसके लिए,
हलाल और हराम का इल्म होना
एग्जैक्टली, ठीक है, हलाल और हराम का इल्म होना उसके लिए जरूरी, ठीक है, क्योंकि ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक का मतलब ये है कि अगर वो कोई हराम काम करने के लिए कहे तब तुम उनकी बात ना मानो, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हराम क्या होता है, तभी आप डिसाइड कर सकेंगे ना कि बात नहीं माननी है। अगर पता ही कोई नहीं, तो ऐसी बस अजम्पशन की बुनियाद पर, गुमान की बुनियाद पर, तो आप अक्सर ऐसे ही होता है, खाम अबू से जाए वो बहस शुरू कर दी होती है, या अम्मी से जाना वो बहस शुरू कर दी होती है, और समझ ही रहे होते हैं कि अम्मी जो है वो हराम का हुक्म दे रही है, हालांकि अम्मी हराम का हुक्म नहीं दे रही होती, ठीक है ना। तो ये अजम्पशन की बुनियाद पर हम ये हरकतें नहीं कर सकते, इसके लिए इल्म हासिल करना होगा, और अगर खुद इल्म नहीं है, नहीं हासिल किया है, तो इल्म वालों से पूछ, ठीक है। तो बस अलू अहद जिक्र का यही मतलब है कि बड़ों से पूछ लें, यानी शेख साहब से जाकर पूछ लें कि अम्मी मुझे ये काम करने को कह रही है, मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या मुझे वाकई उनकी बात नहीं माननी चाहिए, या मुझे मान लेनी चाहिए, या किसी और तरीके से हैंडल कर लेना चाहिए इस मामले, ठीक है। तो इल्म इसकी शर्त है, इल्म के बगैर इस किस्म की हरकतें करना जो शुरू कर देते हैं, तो फिर वो बहुत ज्यादा नुकसान उठा लेते हैं। अल्लाह ताला ने बात की समझ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, आपके जो ये सवाल है ना, ये आपके पिछले वाले सवाल से मिलता है कि बेटर नॉट टू यूज कुरान इन सच सिचुएशन, ये कुछ बात नहीं बनी आपके पास में, नहीं ये ऐसा नहीं है, ये कंफ्यूजिंग है, आप उसको रहने के बाद ऑनलाइन एक सवाल का जवाब दे रहा था मैं, क्लास करूँ।